तारीख 6 नवंबर दिन बुधवार, कार्यक्रम दिन भर के साथ मैं हूँ मानसी दाश। महाराष्ट्र में बैठकों का दौर जारी, अब तक नहीं बन सकी सरकार।
शिवसेना जो है वो अड़ी हुई है ढाई ढाई साल की चीफ मिनिस्टरशिप पर। भारतीय जनता पार्टी अगर छोड़ती है तो सत्ता का बहुत बड़ा इम्बैलेंस होगा।
दिल्ली में आज हुई वकीलों की हड़ताल, अदालतों में कामकाज रहा ठप।
7 बजे से हम चार कर रहे हैं, यहाँ पे एक ताला लगा हुआ था सुबह, अब इन्होंने वकीलों ने देखो चार चार ताले लगा रखे।
इराक में क्यों हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन, सुनवाएंगे दुनिया जहान।
आपने इराक में सदाम हुसैन को हटा तो दिया, लेकिन उसके बाद आगे कैसे सिचुएशन बढ़ेगी, कैसे वहाँ पे एक सिस्टम डेवलप होगा, उस सब के बारे में आपने सोचा ही नहीं।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, सृष्टि श्रीवास्तव से। महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आए हुए 14 दिन हो जाने के बाद भी सरकार के गठन पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। चुनाव नतीजों में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला था। आज हुई बैठकों के बाद भी राज्य में सरकार के गठन पर असमंजस की स्थिति बरकरार है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें तुरंत बर्खास्त करने की चेतावनी भी दी है। कोर्ट ने सरकारों की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि हर किसी को पता था कि इस साल भी पराली जलाई जाएगी, आखिर सरकार ने इस संबंध में पहले से तैयारी क्यों नहीं की, क्यों मशीनें पहले से मुहैया नहीं कराई गई। दिल्ली के स्कूल वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति की वजह से बंद होने के बाद इस हफ्ते में पहली बार खुले हैं। एम्स में फेफड़ों के विशेषज्ञ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस स्थिति को बच्चों सहित सभी के स्वास्थ्य के लिए गंभीर बताया है।
If we continue to say that children should grow up in an environment like this where pollution is bad throughout the year, is it a good thing?
अगर हम ये कहना जारी रखेंगे कि बच्चों को इस तरह के माहौल में बड़ा होना चाहिए जहां पूरे साल प्रदूषण इतने खराब स्तर पर हो, तो क्या ये अच्छी बात है? जाहिर है नहीं, और इसीलिए हमें एक सही समाधान खोजने की आवश्यकता है, क्योंकि हर कोई इससे प्रभावित होने जा रहा है। ये थे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के शब्द। दिल्ली में पुलिस और वकीलों के बीच पार्किंग को लेकर हुआ विवाद बुधवार को भी सुलझता नहीं दिखा। दिल्ली के वकील लगातार तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय की ओर से दाखिल रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया। मंत्रालय ने कोर्ट के 3 नवंबर के आदेश पर स्पष्टीकरण याचिका भी दाखिल की थी, कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने अपने मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी और उपराष्ट्रपति लेनी रॉब्रेडो को मादक पदार्थों के तस्करों से निपटने का जिम्मा सौंपा है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता सल्वाडोर पैनलो ने कहा कि दुतेर्ते ने अपने एक आलोचक को इस अभियान में महत्वपूर्ण पद संभालने का मौका दिया है, लेकिन मनीला में एक संवाददाता सम्मेलन में रोबेड्रो ने कहा कि उन्हें चेतावनी दी गई है कि इस पद की पेशकश करके ड्रग युद्ध की विफलताओं का दोष उन पर मरने की साजिश है।
Ang pinakamahalagang konsiderasyon para sa akin ay
मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर इससे निर्दोष लोगों की हत्याओं को रोका जा सके और सही लोगों को जवाबदेह बनाया जा सके, तो मैं इस बोझ को उठाने के लिए तैयार हूं। इसलिए मैं इस काम को स्वीकार कर रही हूं जो राष्ट्रपति ने मुझे दिया है। ये थे उपराष्ट्रपति लेनी रोबेड्रो के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि उनके देश ने चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट IS के पूर्व प्रमुख अबू बकर अल बगदादी की पत्नी को गिरफ्तार किया है। बगदादी की पिछले हफ्ते एक अमरीकी हमले में मौत हो गई थी। जिम्बाब्वे की सरकार को आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों की मदद करने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। सिविल सेवा के कई नेताओं ने आज एक मार्च का आयोजन किया जिसमें वेतन बढ़ोतरी की मांग की गई है। जिम्बाब्वे में लगातार वेतन कम हुए हैं, ब्रेड और दूध जैसी बुनियादी सामानों का भी प्रयोग घट गया है। मंगलवार को जिम्बाब्वे सरकार ने 77 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया जो वेतन बढ़ाने की मांग पर 2 महीने से हड़ताल पर थे। चीन ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनके अनुसार युवाओं पर लंबे समय तक ऑनलाइन वीडियो गेम खेलने पर रोक है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इस साल मच्छर जनित बीमारी डेंगू से 44,000 लोगों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दाश का नमस्कार। आधे घंटे का ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत महाराष्ट्र से, जहां विधानसभा चुनावों के नतीजे तो 24 तारीख को आ गए और बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 161 सीटें भी मिली, लेकिन दोनों के बीच तनातनी शुरू हुई सीएम की कुर्सी को लेकर। शिवसेना 2.5 साल के लिए सीएम पद चाहती है, लेकिन बीजेपी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। सरकार गठन में देरी से अब विपक्षी दल भी खुलकर बीजेपी शिवसेना पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन बीते कई दिनों से महाराष्ट्र में अगर कुछ जारी है तो है बैठकों का दौर। इस बीच आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। क्या है ताजा स्थिति, जानने के लिए सुनिए हमारे सहयोगी संजय रमाकांत तिवारी की रिपोर्ट।
बुधवार को मुंबई में एनसीपी नेता शरद पवार ने संवाददाताओं को संबोधित किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा और शिवसेना के गठबंधन को बहुमत मिलने के बावजूद सरकार अब तक नहीं बन पाई है, इसके लिए उन्होंने दोनों पार्टियों को खरी खरी सुनाई।
कांग्रेस
राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर काम करने का अवसर दिया है। इसके अनुसार काम करने के लिए दोनों दलों के बड़े नेता तैयार हैं। जिन्हें जनता ने जनादेश दिया है, उन लोगों को हमें यह अवसर जल्द से जल्द देना चाहिए, ताकि महाराष्ट्र में संवैधानिक संकट की स्थिति न बने। शिवसेना का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सत्ता में आधी भागीदारी का वादा किया था। शिवसेना नेता संजय राउत लगातार अपने बयानों से भाजपा पर दबाव बढ़ाने की कोशिश भी करते दिख रहे हैं।
कोई प्रस्ताव न आएगा न जाएगा, प्रस्ताव जो पहले से था ठरल्या प्रमाण करा। चुनाव से पहले गठबंधन की चर्चा हो रही थी, उस वक्त जिस पर सहमति हुई थी यही प्रस्ताव है।
इस बीच भाजपा नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में पार्टी के आला नेताओं से और नागपुर जाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख से मुलाकात की है। हालांकि दोनों नेता इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है। सरकार गठन के मामले में बीते कई दिनों से बीजेपी नेता साफ तौर पर मीडिया में बात करने से बचते दिख रहे हैं। इधर आज मुंबई में राज्य में हाल ही में हुई अनचाही बारिश के कारण फसलों की भारी बर्बादी के मुद्दे पर बैठक हुई, जिसमें शिवसेना और बीजेपी दोनों पार्टियों के मंत्री शामिल हुए। एनसीपी विधायक अनिल देशमुख ने बीबीसी को बताया,
राज्य शासन बीजेपी का फिलहाल जो किसानों की तरफ जिस प्रकार से ख्याल करना चाहिए, जल्द से जल्द मदद देना चाहिए, उधर भी उनका ख्याल नहीं है। पूरे महाराष्ट्र की जनता परेशान है कि मैंडेट देने के बाद ये सरकार नहीं बना पा रहे। शिवसेना बीजेपी वाले अपने झगड़े में लगे हुए कि किसका पहले मुख्यमंत्री होगा।
लेकिन फिर भी अब गेंद बीजेपी और शिवसेना के ही पाले में है और सभी को आस है कि शायद इन बैठकों से कोई रास्ता निकलेगा। इस महीने की 9 तारीख तक अगर नई सरकार का गठन नहीं हुआ तो राज्य में संवैधानिक संकट गहरा सकता है और राष्ट्रपति शासन के आसार बन सकते हैं। फिलहाल नजर इसी बात पर रहेगी कि आने वाले 3 दिनों में क्या कुछ होगा। महाराष्ट्र से संजय रमाकांत तिवारी, बीबीसी।
जैसा कि आपने रिपोर्ट में सुना, आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने दिल्ली जाकर गृहमंत्री अमित शाह से बात की थी। फडणवीस खुद नागपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरकार बनने में देरी और सीएम पद को लेकर फंसे पेच के कारण कितनी अहम है उनकी मुलाकातें। अब से थोड़ी देर पहले मैंने संपर्क किया मुंबई में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार समर खड़स से और उनसे यही पूछा।
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनके हाथ में कुछ बचा नहीं। शिवसेना जो है वो अड़ी हुई है 2.5 साल के चीफ मिनिस्टरशिप पर, और 2.5 साल की चीफ मिनिस्टरशिप अगर 105 विधायक आने के बाद भारतीय जनता पार्टी अगर छोड़ती है तो सत्ता का बहुत बड़ा इंबैलेंस होगा और ये सत्ता चलानी बड़ी मुश्किल बात होगी उनके लिए। तो ऐसे में अमित शाह क्या कर सकते हैं? देखिए, ये देश की राजनीति जो गए 5 साल से चल रही है वो डर के बलबूते पर चल रही है, और डर कई चीजों का है, ईडी का है, इनकम टैक्स का है, सीबीआई का है, पुलिस का है। लेकिन जैसे ही शरद पवार ने ईडी के सामने वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा मैं आऊंगा आपको मिलने, उस वक्त ईडी का डर भी बहुत कम हो गया। उसके कई परिणाम हैं। वो एक परिणाम ये है कि जो शिवसेना 5 साल डरी हुई थी वो शिवसेना अब नहीं डर रही है। तो ऐसे वक्त में अगर अमित शाह इंटरवीन करते हैं, अगर वो इंटरवीन करने के बाद भी अगर उद्धव ठाकरे नहीं सुनते हैं तो उनका ईगो हर्ट होना स्वाभाविक होगा और एक तरह से वो उनकी गरिमा पर भी दाग होगा, इसलिए वो नहीं इंटरवीन कर रहे हैं।
एक ऐसे वक्त जब राजनीतिक हलचल बहुत तेज है, ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के नागपुर जाने को किस तरह से देखा जाए?
देवेंद्र फडणवीस कोई मास लीडर नहीं। देवेंद्र फडणवीस अगर बीजेपी से माइनस करते हैं तो देवेंद्र फडणवीस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी चुनके आने के लिए उन्हें बड़ी दिक्कत करनी पड़ेगी। उनका जो अपब्रिंगिंग है वो सारा संघ परिवार में हुआ है। उनके पिताजी संघ परिवार से जुड़े हुए थे, वो MLC भी थे, बचपन से वो संघ के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो ऐसे वक्त में मोहन भागवत जी जो पूरे भारतीय जनता पार्टी के आला कमान है उनसे मिलेंगे। अमित शाह जो आज देश के नंबर 2 के नेता है, मोदी के सबसे ट्रस्टेड है, उनसे मिलेंगे। उसके बाद वो शायद मोदी जी से मिल सकते हैं, और किससे मिलेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी चीफ मिनिस्टरशिप को लेकर अड़ी हुई है। ऐसे वक्त में उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है ऐसा मुझे लगता है।
तो ऐसे में आने वाले 3 दिनों में फिर क्या क्या कुछ हो सकता है? क्या वाकई में सरकार बन पाएगी या फिर मुश्किल स्थिति और पैदा होने वाली है?
मुश्किल स्थिति और पैदा हो सकती है। यहाँ पर कांग्रेस के जो MLAs है उनसे भी दबाव बढ़ाया जा रहा है दिल्ली पर, और वो कह रहे हैं BJP को सत्ता से दूर रखना जरूरी है, उससे भी दबाव बढ़ रहा है शिवसेना को सपोर्ट देने के लिए। तो ऐसे वक्त में कुछ ना कुछ तो उसमें पर्याय खोजना पड़ेगा। तो वो पर्याय तो यही हो सकता है कि ये तो BJP के साथ ना कांग्रेस जा सकती है ना NCP जा सकती है। तो ऐसे वक्त में शिवसेना के चीफ मिनिस्टर अगर बनता है तो शायद ये दोनों पार्टियां उसमें अपना निर्णय कुछ ले सकती है।
विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार समर खड़स। दिल्ली में 2 नवंबर को शुरू हुआ वकील पुलिस विवाद अब और गहरा गया है। आज हजारों की संख्या में वकीलों ने दिल्ली की अलग अलग अदालतों के सामने प्रदर्शन किया और अदालतों में कामकाज ठप कर दिया। ये वकील पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं कल पूरे दिन पुलिसकर्मियों ने विरोध प्रदर्शन कर अपनी सुरक्षा की मांग की थी। पूरी रिपोर्ट BBC संवाददाता विनीत खरे से।
क्यों बाइट दे रहे हो सर? पूरी मीडिया ने सर, हम लोगों को गुंडा साबित कर दिया, एक सच्चाई नहीं दिखाया।
दिल्ली में वकील मीडिया से नाराज हैं। उनका आरोप है मीडिया वकीलों का पक्ष नहीं दिखा रहा है।
नाश मार रखा है मीडिया वालों, हालत खराब कर रखी है।
अगर सच्चाई दिखाई होती दिल्ली में ये पोजीशन नहीं होता, दिल्ली में ये पोजीशन नहीं होता तो मीडिया
बिकाऊ। शनिवार को 30,000 कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हुई थी। सोशल मीडिया पर पुलिस कर्मियों के साथ कथित मारपीट के वीडियो वायरल होने के बाद उनमें गुस्सा फैल गया। नाराज पुलिस कर्मियों ने मंगलवार को दोषी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग में प्रदर्शन किए। कुछ वकील वायरल वीडियो की सत्यता पर सवाल उठा रहे हैं।
उस वीडियो का सोर्स क्या है? सोर्स नहीं देखा गया जब हमारे भाई को लॉकअप बिल्डिंग के अंदर लेके गया गया और CCTV फुटेज कोर्ट की आ रही है, उसके बाद FIR रजिस्टर नहीं होती है, और ये सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल होने से हमारे भाई के ऊपर FIR रजिस्टर हो जाती है।
वकीलों का दावा है कि पुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हुआ। अभिषेक चौहान,
जब फायरिंग हुई है तब आप वहां थे?
मैं वहीं था।
थोड़ा सा बताइए कि उस वक्त क्या आपने देखा?
फायरिंग उस समय ये हुई है कि मैं वहीं पे खड़ा हुआ था, इन बिटवीन ही आवाज आती है फायरिंग की, 2 शॉट्स फायर हुए हैं। अब वो हवा में फायर हुए हैं या डायरेक्टली फायर हुए हैं ये मैं उसको नहीं देखा, बट फायरिंग मेरे सामने हुई थी। मैं ये नहीं कह सकता कि डायरेक्ट उन्होंने सामने शूट करा है या ऊपर शूट करा है, इसके लिए क्लियर नहीं है कि वो SP गर्ग साहब की कमेटी बैठी है, वो इसमें क्लैरिफिकेशन, वो सब कुछ इन्वेस्टिगेशन जब होगी क्लियर हो जाएगा।
30,000 का जो फर्स्ट गेट है जिसमें पुलिस वाले एंटर करते हैं, गेट नंबर 2 है वो, गेट नंबर 2 के साथ में K ब्लॉक है। K ब्लॉक में सारे एडवोकेट्स अपना, जो लोग बैठ के अपना काम कर रहे थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा लड़कियां थी जो यंग थी, वो सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। उनके चैम्बर को तोड़ा है इन लोगों ने, और तोड़ने के साथ साथ क्या किया है कि उनके साथ भी बदसलूकी की है इन लोगों ने।
वकीलों के विरोध का असर अदालतों के काम पर पड़ा। दिल्ली के साकेत में अदालत के बाहर मुझे कुछ लोग मिले। यहाँ पर मुख्य गेट पर ताले लगे हुए थे और ये लोग बाहर खड़े थे।
आज मेरी बेटी की तारीख थी, अंदर नहीं जाने दिया हमको, और इतना मार काट कर रहे हैं अंदर से बहुत ज्यादा होके।
आज 3 दिन से ये बंद है, एक बार भी नहीं बताया है कि मत आना, जब मैं आती हूँ तो किराया लगती है, 200 रुपये आने जाने की लग जाती है। अगर वो हमारे 200 रुपये रहेगी तो हम अपने घर में खर्चे चलाएंगे ना, हमारे बच्चे क्या खाएंगे।
मामले की न्यायिक जांच जारी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दोषी पुलिस वालों की गिरफ्तारी की मांग की है। विनीत खरे, BBC दिल्ली।
और अब कार्यक्रम में रुख उत्तर प्रदेश का। बिजली विभाग के करीब 45,000 कर्मचारियों के भविष्य निधि का पैसा कथित तौर पर एक डिफॉल्टर कंपनी में निवेश के चलते फंस गया है। वहीं दूसरी ओर इसे लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। सरकार ने 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के इस आर्थिक घपले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। इस मामले में उत्तर प्रदेश बिजली विभाग के कई बड़े अफसरों समेत पावर कॉरपोरेशन के पूर्व एमडी को भी गिरफ्तार किया गया है। सुनिए हमारे सहयोगी समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा करोड़ों रुपए इसलिए फंस गए हैं क्योंकि उस राशि को जहां निवेश किया गया वो कंपनी ही संदेह के घेरे में आ गई है और उसके लेन देन पर रोक लगा दी गई है। कर्मचारियों की पीएफ राशि का निवेश पहले राष्ट्रीयकृत बैंकों में किया जाता था, लेकिन साल 2017 में इसे दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी यानी DHFL में किया जाने लगा। निवेश की शुरुआत तो बीजेपी के शासनकाल में हुई, लेकिन इस प्रक्रिया का समय ऐसा था जो कि राज्य में समाजवादी पार्टी सरकार और बीजेपी सरकार का संधिकाल था। मामला संज्ञान में आते ही सरकार ने इसकी सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। राज्य के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा कहते हैं,
कर्मचारियों की जो भविष्य निधि है उसका निवेश कहाँ होगा, कैसे होगा, एम्प्लॉइज का जो ट्रस्ट है वो तय करता है, ऊर्जा मंत्री का उससे कोई सरोकार नहीं होता है। और इस पूरे प्रकरण की जो पटकथा है वो तो श्रीमान अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में लिखी गई, और उसका समय जो है इस तरह का समय चयन किया गया उसके शुरुआत के लिए जब हमारी सरकार आने वाली थी। हमारी सरकार ने ओथ लिया 19 मार्च 2017 को और 17 मार्च से ये प्रक्रिया भी शुरू कर दी उन्होंने।
बिजली विभाग के कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड के करीब 4000 करोड़ रुपए को पावर सेक्टर एम्प्लाइज ट्रस्ट ने मार्च 2017 में DHFL में निवेश किया। एक साल पहले 1800 करोड़ रुपए मैच्योर होने पर वापस आ गए, लेकिन करीब 2200 करोड़ रुपए की राशि इसलिए अधर में लटक गई क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कई संदिग्ध कंपनियों और सौदों से जुड़ा होने की सूचना पर DHFL कंपनी के भुगतान पर रोक लगा दी। इस मामले में पावर सेक्टर एम्प्लाइज ट्रस्ट के तत्कालीन सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता और पूर्व वित्त निदेशक सुधांशु द्विवेदी को पुलिस ने सरकार की ओर से कराई गई FIR के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि मंगलवार को लंबी पूछताछ के बाद पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक रहे AP मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूरा दोष मौजूदा सरकार को देते हैं।
समाजवादी सरकार के समय पर एक भी पैसा DHFL को नहीं दिया गया, इसके लिए अगर दोषी कोई है तो सरकार दोषी है, मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मामले में सरकार को घेरा है, जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने ऊर्जा मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र कहते हैं कि प्राइवेट कंपनी में निवेश का फैसला पूरी तरह से अवैध था।
प्राइवेट फंड के पैसे को आप किसी नॉन बैंक इसमें नहीं डाल सकते, स्टेट बैंक या शेड्यूल बैंक में रख सकते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उसको पे करे। सरकार कहाँ से पे करेगी ये उसे बताना पड़ेगा लोगों को, और अगर वो नहीं बताएगी तो उसे श्रमिकों के अनरेस्ट का शिकार होना पड़ेगा।
DHFL कंपनी पिछले दिनों इसलिए चर्चा में थी क्योंकि इसके कुछ प्रमोटरों से प्रवर्तन निदेशालय ने दाऊद इब्राहिम के एक पूर्व सहयोगी इकबाल मिर्ची की कंपनी के साथ संबंधों को लेकर पूछताछ की थी। बिजली विभाग के कर्मचारियों को सरकार ने भरोसा दिलाया है कि उनका पैसा डूबने नहीं पाएगा, लेकिन कर्मचारी सरकार के आश्वासन से संतुष्ट नहीं है और राजधानी लखनऊ समेत कई जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। समीरात्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और अब वक्त है साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहान का। इराक में बीते कई दिनों से राजधानी बगदाद समेत कई शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी हैं। अक्टूबर के पहले हफ्ते से शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों में अब तक 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नागरिक सुविधाओं की कमी के कारण सरकार का विरोध कर रहे हैं। वो केवल प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं चाहते, बल्कि 2003 में हुए अमरीकी हमले के बाद से इराक में जो व्यवस्था लागू की गई है उसे खत्म करना चाहते हैं। इराक में क्यों हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन और क्यों लोग मौजूदा व्यवस्था से छुटकारा पाना चाहते हैं, दुनिया जहान में आज इसी की पड़ताल कर रहे हैं BBC संवाददाता इकबाल अहमद।
दुनिया जहान। ये आवाजें थी इराक के शहर कर्बला में स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास में घुसने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों की और सुरक्षा कर्मियों की जवाबी कार्रवाई की। रविवार को हुई इस घटना में सुरक्षा कर्मियों की गोली से 3 प्रदर्शनकारी मारे गए, लेकिन इराक की मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों की मौत का सिलसिला रविवार को नहीं शुरू हुआ।
देखे, 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 देखे,
इसकी शुरुआत हुई 1 अक्टूबर से, जब प्रदर्शनकारी राजधानी बगदाद में बड़ी संख्या में सड़कों पर आ गए। विरोध प्रदर्शन और हिंसा की ये आग दक्षिणी इराक के कई शहरों में फैल गई, लेकिन सरकार ने लोगों के प्रदर्शन को सख्ती से कुचल दिया। प्रदर्शन और हिंसा का दूसरा दौर 25 अक्टूबर को शुरू हुआ। अक्टूबर को प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल महदी की सत्ता के 1 साल पूरे हुए थे। 1 अक्टूबर से शुरू हुए इन प्रदर्शनों में अब तक 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 5000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी और बहुत ही खराब नागरिक सुविधाओं के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। राष्ट्रपति बरहाम सालेह ने कहा है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को चुन लेने और नए चुनावी कानून का ड्राफ्ट तैयार होने के साथ ही मौजूदा प्रधानमंत्री इस्तीफा देने को तैयार हैं। लेकिन प्रदर्शनकारी सिर्फ इस्तीफा नहीं चाहते हैं, बकौल उनके वो पूरी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। एक प्रदर्शनकारी नौजवान का कहना था, हम लोग कर्फ्यू के बावजूद प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ जो किया है वैसे तो उन्होंने इस्लामिक स्टेट के साथ भी नहीं किया। हम लोग क्या आत्मघाती हमलावर हैं? हम लोग तो सिर्फ अपने और लोगों के अधिकार को मांगने के लिए जमा हुए हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के कारण लोगों का गुस्सा है जो इराक के कई शहरों में फूट रहा है, या इसके पीछे कुछ और है? मध्य पूर्व के विशेषज्ञ और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ा चुके प्रोफेसर ए.के. पाशा के अनुसार इसके कई कारण हैं।
देखिए, इराक में जो भी हालात हो रहे हैं वहाँ बहुत संगीन है। इसमें कई वजूहात हैं। एक तो अंदरूनी हालात वहाँ बदतर से बदतर हो रहे हैं। दूसरी वजह, ईरान के खिलाफ मुजाहरे बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। तीसरा जो है, सऊदी अरब और इमारात मिलके अंदरूनी मामलों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और चौथा, अमेरिका और इस्लामिक स्टेट और कुर्दों के बीच और तुर्की का मदाखलत इराक में है। इन सब को लेके और इक्तसादी हालत वहाँ बहुत खराब हो गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन और बिजली, पानी और दूसरे मसले जो कई सालों से लोग परेशान हैं, उन सब को लेके ये शोले उभर गए हैं।
लेकिन क्या केवल भ्रष्टाचार या बेरोजगारी और महंगाई के कारण हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि लोग सुरक्षा कर्मियों की गोली खाने के लिए भी तैयार हैं? जॉर्डन और लीबिया में भारत के राजदूत रह चुके पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुनायत के अनुसार इराक में आज जो कुछ हो रहा है उसकी जड़ें बहुत हद तक 2003 में हैं, जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत कहते हैं,
इस एरिया पूरे रीजन के अंदर सबसे बड़ी शुरुआत, चाहे वो टेररिज्म की हो या इनस्टेबिलिटी की हो, ये सब हुई है 2003 के बाद से ही। और उस वक्त में इराक एक सेकुलर मुल्क होता था, लेकिन जब ये लड़ाई हुई उसके बाद में, अब लोग तो ये कहते हैं, इस तरह से मानना है काफी, कि अमेरिका ने इराक को, ईरान को प्लेटर में रख के दे दिया, क्योंकि वहां पे जो शिया और सुन्नी का जो झगड़ा है वो सबको और ज्यादा हवा मिल गई। कन्फेशनल सिस्टम जो 2003 के अमेरिकन इन्वेजन के बाद में हुआ था, उससे ये प्रॉब्लम जो है वहां की, इस जो पॉलिटिकल की प्रॉब्लम है उस कंट्री में, वो यही है। और वहां पे ईरानी भी काफी वो हैं, और अब लोग ये नहीं चाहते हैं कि चाहे ईरानियन इन्फ्लुएंस बढ़ता रहे वहां पे या अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ता रहे, वो चाहते हैं कि इराकी इन्फ्लुएंस बढ़ता रहे। वो चाहते हैं कि हम इराक को, इराकियों के लिए, इराक के द्वारा आगे बढ़े। आपने इराक में सदाम हुसैन को हटा तो दिया, लेकिन उसके बाद आगे कैसे सिचुएशन बढ़ेगी, कैसे वहाँ पे एक सिस्टम डेवलप होगा, किस तरह से इंक्लूसिवनेस आएगी, उस सब के बारे में आपने सोचा ही नहीं।
ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला खामेनेई ने इन सब के लिए अमरीका और मध्य पूर्व के दूसरे देशों को जिम्मेदार ठहराया है। प्रोफेसर पाशा का भी मानना है कि इराक में विदेशी हस्तक्षेप बहुत है। वो कहते हैं,
क्योंकि अमेरिका ईरान पे हमला करने से गुरेज रहा, जो सऊदी अरेबिया और इमारात और इजराइल चाहते थे, तो अब ये इनडायरेक्ट तरीका अपनाए हैं ये 3-4 मुल्क, अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरेबिया, इमारात मिलके इराक और लेबनान में। अगर आप गौर से देखें, इन दोनों ममालिकों में जो डिमांड्स हैं ایک جتا ہے، سیم ہے، اور دونوں میں بھی حزب اللہ کے خلاف اور یہاں ایران کے خلاف عراق میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔
لیکن عراق میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ شیعہ بہل علاقے میں ایران کے خلاف لوگ سڑکوں پر ہیں، ایرانی دفتروں پر حملے کر رہے ہیں اور ایران کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ اس کا کارن بتاتے ہوئے پروفیسر پاشا کہتے ہیں،
2.5 لاکھ سیریا کے ریفیوجیز ہیں اور 10-12 لاکھ انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہیں، ان میں کم سے کم 100 ارب ڈالر کا خرچ آنے والا ہے، تو عراقی گورنمنٹ ان چیزوں میں ملوث ہے، سنی میں، کیونکہ سنی علاقے میں جو انسیکیورٹی تھی اس کو لے کے اسلامک اسٹیٹ ابھر کے نکلا اور امریکہ بھی وہاں الجھ گیا، تو شیعہ ایریا کو نیگلیکٹ کر کے دھیرے دھیرے یہ ایسے حالات پیدا ہوئے جو کہ اب استعمال کر کے ایران کے خلاف کر رہے ہیں اور مہدی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں۔
عراق کے علاوہ لبنان میں بھی پچھلے کئی دنوں سے لوگ سڑکوں پر ہیں۔
مبسوطہ، ان شاء اللہ کل الاحوال یا رب تصل للاحلى،
I love so much Lebanon, I wish۔
لوگوں نے سینکڑوں کلومیٹر لمبی ہیومن چین بنائی اور کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ انہیں پہلی بار لبنانی ناگرک ہونے پر گرو ہو رہا ہے۔ تو کیا ان سب کو نیا یا دوسرا عرب اسپرنگ کہا جا سکتا ہے؟ امبیسڈر انیل تروگنایت تو اسے دوسرا عرب اسپرنگ ہی مانتے ہیں۔
دیکھیے، یہ عراق میں اور لبنان میں یا سودان اور الجیریا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جو اب تک ایک طرح کا ایک عرب اسپرنگ 2.0 کی ایک شروعات ہے، جہاں لوگ جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ان کا جو لیڈرشپ ہے، اس سے بہت خفا ہیں، اور خفا اس لیے ہیں کہ جو ان کی بیسک نیڈز ہیں اس سب کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا گیا۔
لیکن پروفیسر اے کے پاشا اسے پوری طرح سہمت نہیں ہیں۔
دیکھیے، یہ تو اب فی الحال لبنان اور عراق میں ہی ہو رہا ہے، کہیں اور اس کی پکڑ نہیں ہے۔ مصر میں چھوٹے موٹے مظاہرے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تر دونوں علاقوں میں کی پلیئر سعودی عربیہ ہے، جس میں اسرائیل اور امریکہ بھی شامل ہے، متحدہ امارات بھی۔
لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ پروفیسر پاشا کے انوسار آنے والا سمے اور خراب ہو سکتا ہے۔
کچھ عرصے تک یہ مظاہرے چلتے رہیں گے، اور میرے خیال سے یہ کولڈ وار جو ایران اور سعودی عرب کے بیچ میں ہو رہی ہے، جس کا شکار عراق اور لبنان اور یمن بھی ہو رہے ہیں، تو یہ دھیرے دھیرے بڑھ کے دوسرے دیشوں میں بھی پھیلنے کی سمبھاونا ہے۔ شاید سعودی عرب اور بحرائن یا جارڈن بھی ممکن یا شامل ہو سکتا ہے۔
یہ دوسرا عرب اسپرنگ ہے یا نہیں، عراق میں لوگ اپنے حق کے لیے سڑکوں پر ہے، یا عراق باہری شکتیوں کی لڑائی کا کیول ایک مہرہ ہے، کچھ بھی بہت دعوے سے کہنا مشکل ہے۔ جو سچ ہے وہ یہ کہ بغداد کی سڑکوں پر عام لوگوں کا خون بہہ رہا ہے، اور کوئی ایک بات اگر تعریف کے لائق ہے تو وہ ہے وہاں کے آٹو چلانے والے، جو کسی طرح سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ بال احمد، بی بی سی، دلی۔
اور اب کارکرم میں آپ سے ودا لیں، اس سے پہلے مکھیہ سماچار ایک بار پھر سرشتی شریواستو سے۔
بی بی سی سماچار۔ دلی این سی آر میں پردوشن کی گمبھیر استھتی پر سپریم کورٹ نے ہریانہ اور پنجاب سرکار کو فٹکار لگائی ہے۔ ہانگ کانگ میں بیجنگ سمرتھک ایک نیتا جونیس ہو پر آگامی چناؤں کے لیے پرچار کرتے سمے چاقو سے حملہ ہوا، جس میں وہ گھائل ہو گئے ہیں۔ چین اور فرانس کے راشٹرپتیوں نے پیرس جلوایو سمجھوتے پر اپنے مضبوط سمرتھن کی پشٹی کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا ہے۔ دکشنی تھائی لینڈ کے یالا میں ایک سرکشا چوکی پر ہوئے حملے میں کم سے کم 15 لوگ مارے گئے ہیں۔ بی بی سی سماچار۔
دن بھر میں آج اتنا ہی۔ کارکرم کا تکنیکی پکش سنبھالا شاکر عالم نے۔ اگلا پرسارن نمسکار بھارت کل سویرے۔ تب تک دیش دنیا کی خبروں کے لیے بنے رہیے bbchindi.com کے ساتھ۔ فی الحال مانسی داش سمیت پوری ٹیم کو دیجیے انومتی۔ شبھ راتری۔